खुदा की तारीफ हो। आए हम सब मिलकर अपनी अंजीलें खोलेंगे। पहला तिमोथियस उसका 4:12। पहला तिमोथियस 4:12। और खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। आमीन। आए अब हम सब मिलकर दुआ करेंगे। ज़मीन और आसमान के मालिक कादर मुतलिक खुदावन, हम सब आपके हुजूर आते हैं और आपसे इल्तजा करते हैं कि आप हमारे दिलों को और जहनों को खोलिए, ताकि आज जब हम आपके कलाम को सुने तो ना सिर्फ उसे सुने बल्कि आपके कलाम पर अमल करें, ताकि आपके नाम को जलाल मिले। आप हमें छूइए। आज जब हम आपके कलाम को सुने खुदावन, तो हम अपने गुनाहों से तौबा करें और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलें और एक अच्छी मिसाल और एक अच्छा नमूना बने। खुदावन, हम ये दुआ यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आए हम सब मिलकर दोबारा से ये हवाला पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस 4:12। पहला तिमोथियस 4:12। और खुदा के कलाम में लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। पौलुस रसूल ने ये ख़त तिमोथियस को लिखा, जो कि जवान लड़का है और वो खुदा की खिदमत कर रहा है। बहुत अच्छे तरीके से वो खुदा की खिदमत कर रहा है, बहुत मेहनत से और बहुत सब्र से वो खुदा की खिदमत कर रहा है। और पौलुस ने इसको ये ख़त हिम्मत और हौसला देने के लिए लिखा कि तू जिस तरह खुदा के साथ चल रहा है और तू जिस तरह से खुदा की खिदमत कर रहा है, इसी तरह से तू खुदा के साथ चलता रहे और इसी तरह से तू खुदा की खिदमत करता रहे। पौलुस उसे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, यानी कि कोई तुझे छोटा ना समझे। पौलुस तिमोथियस को ये कह रहे हैं कि हाँ, तू जवान है, तू उम्र में छोटा है, लेकिन जब तक तू खुदा के साथ वफादारी से और ईमानदारी से चल रहा है, जब तक तू खुदा की खिदमत वफादारी और ईमानदारी से कर रहा है, तू एक कामयाब शख्स है और खुदा ने तुझे सर बनाया है, ना कि दूम। खुदा ने हम सबसे मोहब्बत की और उन्होंने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदावन यीशु इस दुनिया में आए हम सबको हमारे गुनाहों से और मौत से बचाने के लिए। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 3:16। यूहन्ना की अंजील उसका 3:16। यूहन्ना की अंजील उसका 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी बिताई जो हम सब के लिए एक नमूना है, हम सब के लिए एक अच्छी मिसाल है। मसीह ने खुदा का अच्छा काम किया, मसीह ने बहुत सारे मोजज़े दिखाए, उन्होंने मुर्दों को जलाया, उन्होंने बीमारों को शिफा दी, उन्होंने बदरूहों को निकाला, उन्होंने अपने शागिर्दों को खुदा के पीछे चलना सिखाया और उन्होंने अपने शागिर्दों को खुदा की खिदमत करना सिखाया। मसीह ने हम सब के लिए दुख सहे, उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी हमारे गुनाहों के लिए, उन्हें दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, उन सबको हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए जो उन पर ईमान लाए हैं, जो उन पर भरोसा करते हैं और जो मसीह के नक्शे कदम पर चलते हैं। इसीलिए पहला पत्रस उसका 2:21 में लिखा है, हम सब मिलकर देखेंगे पहला पत्रस उसका 2:21। पहला पत्रस उसका 2:21। और खुदा के कलाम में लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। आमीन। तो विश्वासी होने के नाते और ईमानदार होने के नाते हमें चाहिए कि हम मसीह की मिसाल को और मसीह के नमूने को अपनी ज़िंदगी में लें और हम दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल और एक अच्छा नमूना बने। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए, बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने और चाल चलन और मोहब्बत और ईमान और पाकीज़गी में नमूना बन। अब हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि हमें किन किन चीज़ों में एक अच्छी मिसाल और एक अच्छा नमूना बनना है, हमें किन किन चीज़ों में एक अच्छी मिसाल और एक अच्छा नमूना बनना है। हम अपना पहला पॉइंट देखेंगे, पहला तिमोथियस उसका 4:12 में, पहला तिमोथियस 4:12 हम दोबारा से पढ़ेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, कोई तेरी जवानी की हकारत ना करने पाए बल्कि तू ईमानदारों के लिए कलाम करने। पहला हमारा पॉइंट है कलाम करने में, यानी कि हमें कलाम करने में दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बनना है। हम जो कुछ भी अपनी ज़ुबान से बोलते हैं, जो कुछ भी हमारे मुंह से निकलता है, वो ये दिखाता है कि हम हैं कौन और हम किसकी खिदमत करते हैं। हमारा बोलचाल जो है वो उम्मीद से भरपूर होना चाहिए और खुदा पे भरोसे के साथ होना चाहिए। हमें सच बोलना है, हमें खुदा की तारीफ करनी है अपने मुंह से, ना कि हर वक्त हमें शिकायतें करते रहना है। खुदा ने हमें ज़ुबान दी है ताकि हम दूसरों को खुदा की अच्छाई के बारे में बताएं, दूसरों को खुदा की ईमानदारी के बारे में बताएं, दूसरों को खुदा की वफादारी के बारे में बताएं, ना कि हर वक्त हम अपनी ज़ुबानों से और अपने मुंह से शिकायतें करते रहे और चुगलियां करते रहे। हमें ज़रूरत है कि हम खुदा के कलाम को पूरी दुनिया में पेश करें और हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदा के खादिमों के तौर पर पेश करें, जिनमें उम्मीद होती है और जिनमें भरोसा होता है। अब हम सब मिलकर देखेंगे कुलसियों 4:5-6। कुलसियों की किताब 4:5-6। कुलसियों की किताब और उसका 4:5-6। और यहाँ यूँ लिखा है, वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। आमीन। हमें वही बोलना है जो पुरफजल हो और जो नमकीन हो, और हमें लोगों को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हमें वही बोलना है जो ज़रूरत के मुआफिक हो और जो दूसरों के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक तरक्की का बायस हो। हम खुदा के कलाम में से एक और हवाला देखेंगे, इफ़सियों 4:29। इफ़सियों 4:29। इफ़सियों 4:29। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। तो जैसे हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा कि हमारे मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकलनी है, कोई गाली हमारे मुंह से ना निकले, हमारे मुंह से वही बातें निकलनी चाहिए जो ज़रूरत के मुआफिक हों और जो दूसरों के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक तरक्की का बायस बने। ये था हमारा पहला पॉइंट, यानी कि हमें दूसरों के लिए एक अच्छा नमूना बनना है कलाम करने में। अब हम अपना दूसरा पॉइंट देखेंगे जो कि है चाल चलन। चाल चलन, हमें दूसरों के लिए चाल चलन में एक अच्छा नमूना बनना है, यानी कि हमें ज़िंदगी में एक अच्छा नमूना बनना है। हमारी ज़िंदगियाँ एक अच्छा नमूना होनी चाहिए दूसरों के लिए, हमारी ज़िंदगियाँ एक ऐसा अच्छा नमूना होनी चाहिए दूसरों के लिए कि दूसरे जब हमारी ज़िंदगियों को देखें, जब हमारी ज़िंदगियों पे गौर करें तो वो मसीह को कबूल कर लें। हमारी ज़िंदगियाँ पाक होनी चाहिए और हमारी ज़िंदगियाँ रास्तबाजों वाली ज़िंदगियाँ होनी चाहिए। हमारी ज़िंदगियों से खुदा का फजल दिखना चाहिए, हमारी ज़िंदगियों से खुदा की बरकतें दिखनी चाहिए, और जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं वो खुदा की हजूरी को साफ तरीके से हमारी ज़िंदगी में देख सकें। इसीलिए खुदा का कलाम हमें कहता है, यकूब की किताब उसका 3:13 में, यकूब की किताब उसका 3:13 में लिखा है, तुम में दना और फहीम कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को नेक चाल चलन के वसीला से उस हिल्म के साथ जाहिर करे जो हिकमत से पैदा होता है। आमीन। हमारी ज़िंदगियों में तरक्की का और कामयाबी अमीरी से नहीं आती, महंगी चीज़ों से हमें अच्छी ज़िंदगी नहीं मिलती, अच्छी ज़िंदगी अमीरी से नहीं मिलती, बल्कि अच्छी ज़िंदगी हमें खुदा के कलाम के मुताबिक चलने से मिलती है। अच्छी ज़िंदगी हमें तब मिलती है जब हम खुदा की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा होने देते हैं, जब हम अपने आप को हलीम और आजिज़ करते हैं, तब हमें अच्छी ज़िंदगी मिलती है, और जब हम खुदा के मंसूबों को अपनी ज़िंदगी में कबूल कर लेते हैं तब हमें अच्छी ज़िंदगी मिलती है। तो हमारा 3rd पॉइंट है मोहब्बत। मोहब्बत, मोहब्बत खुदा के लिए, दुनिया के लिए नहीं। हमारे दिलों में खुदा के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। खुदा की मोहब्बत पाक है, खुदा की मोहब्बत रास्तबाजी है। हमें इस दुनिया के रोमांटिक मोहब्बत के पीछे नहीं भागना है, बल्कि हमें खुदावन की मोहब्बत के पीछे चलना है जो हमें गुनाह करने से रोकती है। हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 13:8-10 तक। रोमियो की किताब उसका 13:8-10 तक, और खुदा के कलाम में लिखा है, आपस की मोहब्बत के सिवा किसी चीज़ में किसी के कर्ज़दार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से मोहब्बत रखता है उसने शरीयत पर पूरा अमल किया। क्योंकि ये बातें कि जिना ना करना, खून ना करना, चोरी ना करना, लालच ना कर, और इसके सिवा और जो कोई हुक्म हो, उन सब का खुलासा इसी बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। मोहब्बत अपने पड़ोसी से बदी नहीं करती, इस वास्ते मोहब्बत शरीयत की तख्मील है। आमीन। मोहब्बत हमें बदी नहीं सिखाती, मोहब्बत दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाती, मोहब्बत दूसरों की ज़िंदगियों को तबाह नहीं करती, मोहब्बत दूसरों का हक नहीं छीनती, मोहब्बत दूसरों की दौलत और जायदाद नहीं छीनती। तो ये हमारा 3rd पॉइंट था मोहब्बत के बारे में। अब हम अपने 4th पॉइंट के बारे में देखेंगे, जो कि है ईमान। ईमान, लोगों को हमारी ज़िंदगियों में ईमान दिखना चाहिए जो कि फर्मा बरदारी के साथ है, और जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है, और जो खुदा के हुक्मों के मुताबिक है। ईमान अमाल के साथ होना चाहिए, और ईमान जो अमाल के साथ नहीं है वो मुर्दा है, जैसे कि हम खुदा के कलाम में से पढ़ भी सकते हैं, यकूब की किताब उसका 2:14-17 तक। यकूब की किताब उसका 2:14-17 तक, और खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ मगर अमल ना करता हो तो क्या फ़ायदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोज़ाना रोटी की कमी हो اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دیں تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ آمین۔ تو ایمان دکھنا چاہیے لیکن اعمال کے ساتھ، یعنی کہ اچھے کاموں کے ساتھ۔ ہم ایک اور حوالہ پڑھیں گے، افسیوں 2:10، افسیوں 2:10 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ آمین۔ تو یہ تھا ہمارا چوتھا پوائنٹ ایمان کے بارے میں۔ اب ہمارا آخری پوائنٹ ہے پاکیزگی، ہمارا پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے پاکیزگی۔ ہمارا چال چلن ہی صرف پاک نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا دل بھی پاک ہونا چاہیے، کیونکہ خداوند دلوں کے ارادوں کو جانچتے ہیں۔ ہمارا دل پاک صاف ہونا چاہیے، ہمارا دل میں کوئی برا خیال نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دل سے ہی سارے گناہ شروع ہوتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا 15:19، متی کی انجیل اس کا 15:19۔ کیونکہ برے خیال خونیوں، زناکاروں، حرام کاروں، چوروں، جھوٹی گواہیوں، بدگواہیوں دل ہی سے نکلتی ہیں۔ آمین۔ تو جیسے کہ ہم نے خدا کے کلام میں پڑھا ابھی متی کی انجیل میں کہ یہ ساری چیزیں دل ہی سے نکلتی ہیں، تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک صاف رکھیں۔ ہمارے دل میں پاکیزگی ہونی چاہیے، ہمارے دل میں کوئی غلط ارادہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں کوئی برا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ہم خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم آخری حوالہ پڑھیں گے متی کی انجیل 5:16، متی کی انجیل 5:16۔ اور خدا کے مقدس کلام میں لکھا ہے، اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ آمین۔ تو خدا چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنیں، ہم دوسروں کے لیے ایک اچھی مثال بنیں، تاکہ جب لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگیوں پہ غور کریں، تو وہ ہمارے آسمانی باپ کی تمجید کریں، ہمارے آسمانی باپ کو قبول کریں۔ ہم اس دنیا کے نور ہیں، ہم اس دنیا کے نمک ہیں، ہم زمین کے نمک ہیں۔ اب ذمہ داری ہم پر ہے کہ ہم اسی طرح کے بنیں جس طرح کے خدا چاہتے ہیں کہ ہم ہوں۔ آئے ہم سب مل کر دعا کریں گے۔ زمین اور آسمان کے مالک، ہم آپ کے حضور آتے ہیں یسوع کے نام میں جنہوں نے صلیب پر اپنی جان دی ہمارے گناہوں کے لیے۔ خداوند آپ ہماری مدد کریں، ہمیں ہمارے سارے گناہوں سے پاک صاف کریں، اور خداوند آج ہم توبہ کرتے ہیں اور آج ہم خداوند سمجھ گئے ہیں کہ آپ چاہتے ہو کہ ہم ایک اچھا نمونہ بنیں، ہم ایک اچھی مثال بنیں دوسروں کے لیے، تاکہ دوسرے ہمارے وسیلہ سے آپ کو قبول کریں۔ خداوند ہمیں خداوند یسوع کی طرح بنائیں، ہمیں روح القدس کے زیادہ سے زیادہ تحفے دیں، اور ہمیں اسی طرح کا انسان بنائیں جس طرح کے آپ چاہتے ہیں کہ ہم ہوں۔ یہ دعا ہم یسوع کے نام میں مانگتے ہیں۔ آمین۔ آمین۔